Shanti. आप सभी बाबा के बच्चे सफलता के सितारे हैं। हर आत्मा को सफलता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ विधि भी है और विधान भी है। कुछ दिन पहले बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाया था कि ब्राह्मण बच्चे अगर विधि विधान और वरदान इन तीनों को जीवन में ले आए तो सफलता तो है ही है, लेकिन बाप समान सहज बन जाएंगे। विधि पूर्वक चलना ये तो अज्ञान काल से भी चला आ रहा है। कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसकी विधि पूर्वक पूजा आज कुछ भी करके शुरू करते हैं, तो चाहे भौतिक जगत में सुख चाहिए, प्राप्ति चाहिए, सफलता चाहिए, तो भी विधि की जरूरत है। और इस ब्राह्मण जीवन में भी चाहे सफलता, चाहे भगवान से मिलन, चाहे प्राप्तियां, कुछ भी है उसके लिए भी विधि है। जैसे लौकिक दुनिया में मान लो कोई घर बनाता है, नया घर, तो इसलिए बनाता है कि इस घर में हम सुख से रहेंगे, सुख की प्राप्ति के लिए नया घर बनाता है। लेकिन अगर वो घर बनाते समय वास्तु कला के हिसाब के बिना विधि पूर्वक नहीं बनाया, तो जो घर सुख प्राप्ति के लिए बनाया था वो घर दुख देने वाला हो जाएगा। या तो बीमार रहेंगे, या लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, या पैसे की कमी रहेगी, कुछ न कुछ समस्या जरूर बनी रहेगी अगर विधि पूर्वक नहीं किया तो। इसी प्रकार इस अलौकिक जीवन में अगर हमें कहीं सफलता नहीं है तो कारण है विधि की कमी, क्योंकि तीनों से बाबा ने तीन प्राप्तियां बताई थी। विधि से सिद्धि मिलती है, विधान से नव सृष्टि का निर्माण होता है, और वरदान पर चलने से वरदानी मूरत बन जाते हैं। तो इस अलौकिक जीवन में विधि पूर्वक चलने से सफलता कैसे मिलती है? एक उदाहरण मान लो, आप ये चाहते हैं कि मैं आत्मा निरंतर बेहतर योगी बन जाऊं। मुझे बाबा की याद सदा बनी रहे और इसकी विधि बाबा ने बताई है कि बच्चे अगर आपका अमृत बेला श्रेष्ठ हो गया, सफल हो गया, तो सारा दिन सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि सारे दिन का आधार अमृत बेला है। जैसे बाबा ने एक उदाहरण देकर बताया था, आप लोग अपने घर से मधुबन में आए हैं, लगभग लोग ट्रेन से आए होंगे, ट्रेन को देखा होगा कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो ट्रेन को खींचने के लिए इंजन को मेहनत लगती है, लेकिन जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफी दूर तक उस स्पीड के कारण ट्रेन चली जाएगी। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारे दिन में निमित्त मात्र अटेंशन रखने से आपके पुरुषार्थ की गाड़ी चलती रहेगी, मेहनत नाम मात्र सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन आपका अमृत बेला सफल हो, आपका सुबह योग बड़ा अच्छा लग जाए, भगवान से शक्ति मिल जाए, इसका आधार है आपका पहला संकल्प। आंख खुलते ही जो संकल्प आता है वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। आप कल देख लेना, एग्जाम्पल देता हूं, देख लेना, मेजॉरिटी तीन प्रकार का संकल्प आता है सोकर उठते ही, और तीनों प्रकार के संकल्प की रिजल्ट क्या होती है आप कल प्रयोग करके देखना। जो सो करके उठते ही पहले घड़ी देखते हैं कि कितना बजा है, एक ये होते हैं। दूसरा संकल्प होता है जो सो करके उठते हैं तो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन के ऊपर रह गया है वो सोकर उठते वही याद आता है। और तीसरा, कोई सो करके उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं। अब इन तीनों की रिजल्ट क्या है सुनो। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, कल प्रयोग करके देखना, तो जो सोकर उठकर घड़ी देखते हैं वो जब योग में बैठेंगे तो हर 5-10 मिनट के बाद संकल्प आएगा अभी कितना बजा है, अभी कितना बाकी है, फिर घड़ी देखेंगे कितना बाकी है, 5-10 मिनट के बाद घड़ी याद आ जाएगी। टोटल निसंकल्प संकल्प होकर बाबा के पास बैठ जाएं, वो नहीं हो पाएगा। कल करके देखना। अब प्रश्न है, क्या अगर 12 बजे आंख खुल जाए तो क्या करें? आपकी किसी समय भी आंख खुले, कब भी, आप पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करो। मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करने के बाद घड़ी देखो, पहले घड़ी नहीं देखो। गुड मॉर्निंग करो, फिर जैसा समय हो वैसा करो, लेकिन पहले गुड मॉर्निंग। और जो सोकर उठते ही अगले दिन बाबा को चार्ट नहीं दिया है, मन को खाली करके नहीं सोए हैं, तो जो सोकर उठते ही याद आता है, तो योग में बैठेंगे तो उनका मन बुद्धि बार बार उसी तरफ जाता रहेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब रह गया है। और तीसरा, जो सोकर उठते सिर्फ कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग, वो भी राइट नहीं है। सोकर उठते ही सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन बाप दादा गुड मॉर्निंग, मात पिता दोनों से गुड मॉर्निंग करो। तो दोनों से गुड मॉर्निंग करो, माँ बाप दोनों से गुड मॉर्निंग दोनों से करो। याद शिव बाबा को करो और सने ब्रह्मा बाबा से रखो। अंतर क्या है? गुड मॉर्निंग मात पिता दोनों से करो, याद शिव बाबा को करो, आत्मा समझकर परम आत्मा को याद करो। स्नेह ब्रह्मा बाबा से रखो। स्नेह रखना अर्थात, जैसे इस लौकिक दुनिया में किसी माँ बाप का बच्चा बहुत अच्छा होता है, सपूत होता है, तो माँ बाप शरीर छोड़ते हैं तो बच्चा रोज माँ बाप के फोटो के जैसे लौकिक में एक आज्ञाकारी सपूत बच्चा बाप के फोटो के आगे कहता है, पिताजी आपने जो मुझे कहा है वो वचन मैं अवश्य पूरा करूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूंगा। ये है उस बच्चे का माँ बाप के प्रति स्नेह। तो आपका ब्रह्मा बाप से स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, फॉलो फादर अर्थात ब्रह्मा बाप से स्नेह। कैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया वैसे मुझे याद करना है। कदम पिछाड़ी कदम रखना इसको कहा जाता है ब्रह्मा बाप से स्नेह। तो स्नेह ब्रह्मा बाप से रखो, याद शिव बाबा को करो, गुड मॉर्निंग माँ बाप दोनों से करो। तो पहले ही संकल्प में दोनों से गुड मॉर्निंग कैसे होगी उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि आंख खुलते ही आप दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ कर लो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो आकारी बनोगे, शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो निराकारी बनोगे। बिना आकारी और निराकारी बने बिगर आपकी गुड मॉर्निंग बाबा तक पहुंचेगी नहीं। आप करोगे लेकिन पहुंचेगी नहीं। अगर पहुंचती है आपकी गुड मॉर्निंग, उसका प्रूफ है आपने गुड मॉर्निंग की और आपकी गुड मॉर्निंग भगवान तक पहुंच गई, उसका प्रूफ है कि आपको पहले ही संकल्प में खुशी शक्ति और कोई न कोई वरदान अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की गुड मॉर्निंग खाली नहीं जाती है। अगर पहुंचती है तो आपकी गुड मॉर्निंग कैसे भगवान तक पहुंचे, बाप दादा तक पहुंचे, उसकी विधि बाबा ने बताई थी कि आंख खुलते ही आप संकल्प लाओ कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित होकर ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। اچھا میٹھے باپ دادا گڈ مارننگ۔ تو آتما کے ناطے سے شیو بابا سے گڈ مارننگ ہو جائے گی، اور برہمن کے ناطے سے برہما باپ سے گڈ مارننگ ہو جائے گی۔ لیکن یہ آنکھ کھلتے ہی پہلے سنکلپ تب آئے گا کہ میں آتما پرم دھام سے اوترت ہوئی ہوں۔ میجارٹی لوگ ابھیاس کرتے ہیں کہ میں آتما دے دے کے سمبندھوں سے نیاری سور تارا گن کے پار نیچے سے اوپر چڑھتے پرم دھام میں لے جاتے یا سوکشم وطن میں لے جاتے۔ لیکن بابا نے بتایا اوپر سے اوترت ہو، جیسے برہما باپ اوترت ہوا ہے شیو بابا اوترت ہوتا ہے، ایسے برہمن آتما بھی اوترت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سنکلپ تب آئے گا جب آپ رات کو، مطلب ابھی، سونے سے پہلے بابا کو چارٹ دے کر بابا کی یاد میں پرم دھام میں سو جائیں گے، تب سو کر اٹھتے ہی سنکلپ آئے گا کہ میں پرم دھام سے اوترت ہوئی ہوں۔ اگر بنا چارٹ دیے بابا کی یاد میں رہے بنا سوئے تو یہ سنکلپ نہیں آئے گا، پھر گڈ مارننگ نہیں ہو پائے گی، پھر پراپتی نہیں ہو پائے گی۔ تو اگر اس بدھی سے گڈ مارننگ کرو تو پہلے سنکلپ میں خوشی شکتی اور بردان کی پراپتی ہوگی۔ مان لو پہلے سنکلپ میں نہیں ہو پائی، دوسرا کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، گڈ مارننگ کر کے ہی اور کوئی سنکلپ لو۔ جیسے آپ کسی کو بلا رہے تھے، کوئی جا رہا تھا، آپ بلا رہے ہو، آپ نے آواز دیا وہ نہیں سنا، تو کیا کرتے ہو؟ دوبارہ آواز دیتے ہو نا، اور زور سے آواز دیتے ہو نا، دوڑ کے جاتے ہو نا اس تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے پریاس کرو، اگر پہلے سنکلپ میں نہیں پہنچا اور اٹینشن دے کر اور بابا سے پیار جوڑ کر گڈ مارننگ کرو، بابا کھینچے گا ضرور، پراپتی ہوگی ضرور۔ تو اگر آتما کو پہلے سنکلپ میں پراپتی کی انبھوتی ہو گئی تو آتما جاگرت اوستھا میں آ جائے گی اور پرسارتھ کی اسپیڈ پکڑ لے گی، اور صبح اس پرسارتھ کی اسپیڈ پکڑ لی تو دن میں تو نمت ماتر اٹینشن دینے سے ہی پرسارتھ چلتا رہے گا۔ ایسے بابا کہتا ہے کرم میں ہر کرم کرم یوگی بن کر کرو، ترکال درسی استھتی میں استھت ہو کر کرو، ہر سمے باپ کے سمبندھ کا لابھ اٹھاؤ۔ ایسے اگر آپ کرتے رہو بدھی پوربک تو سفلتا اوشیہ مل جائے گی، نرنتر یوگی بن جائے گی۔ دوسرا ہے ودھان، आप सतयुगी दुनिया का विधान बना रहे हो, इस समय आप जो ईश्वरीय नियम के आधार पर चलते हो वही सतयुगी विधान बन जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कहते देवताओं की चाल बड़ी रायल होती है, बहुत श्रेष्ठ होती है। बाबा साकार बाबा था, अगर कोई चलता हुआ किसी का जूता या चप्पल जरा सा खटपट आवाज कर दे, चप्पल घिस टिस कर दे, जरा सा आवाज आ जाए, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं कलयुगी मानव है। आपकी यहां की रॉयल्टी देवताओं की रॉयल्टी है। मम्मा कहती थी कि जिसका चप्पल घिस पिस हो रहा है उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। अगर आप रॉयल्टी से चल ही नहीं सकते हैं तो रॉयल पद कहां से पाएंगे, सोचो सही। अब रॉयल चलन होती कैसे है, आपको अनुभव है कि जिस घड़ी आपको बाबा की याद होती है, बाबा की याद में चलते हैं, उस समय आपकी चाल कैसी होती, और जब नहीं याद होता है तब कैसी चाल होती है, अनुभव होगा। बाबा की याद है तो कितना गंभीरता से धैर्यवत से चलते हैं, और नहीं याद है तो फटफट फटफट चलेंगे, जोर जोर से बातचीत करेंगे, जोर जोर से चलेंगे, नहीं याद है तो, और याद है तो कितना गंभीरता से चलते। दादियां बताती है कि मम्मा बाबा कब आकर के पीछे खड़े हो जाते थे पता ही नहीं पड़ता था, जबकि बाबा चाखड़ी पहनता था, चाखड़ी आवाज करती है, लेकिन बाबा कब आया किसी को पता ही नहीं पड़ता। इसको कहा जाता है रॉयल चाल। तो जो भी ब्राह्मण ईश्वरीय नियम पर चल रहे हैं ये सतयुगी विधान बन रहा है। कहा जाता है देवताएं बहुत थोड़ा खाते, आप बाबा की याद में रहकर खाओ और बिना याद में रहकर खाओ, देखो अंतर भी। याद में रहकर खाओगे थोड़ा खाओगे, धीरे धीरे खाओगे, और बिना याद में खाओगे सब्जी टेस्टी बनी है तो एक दो रोटी ज्यादा ही खा जाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे। तो अभी जितना आप ईश्वरीय विधान पर चलते हो उतना सतयुग का नव निर्माण कर रहे, विधान बनाने वाले भी आप और चलने वाले भी आप। देवी देवता कौन बनेगा, यही बनेंगे ना, तो बनने वाले भी यही, निर्माण करने वाले भी यही। तो जब हमको ही बनना है तो अभी हमें ईश्वरीय नियम पर स्वयं को चलाना है, जो भी ईश्वरीय नियम। देवताओं का खान पान शुद्ध होता है, बोल चाल बहुत रायल होती है, धीरे से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, जो भी नियम है देवताओं, वो इस समय धारण करनी। तो विधान पर चलो तो नव निर्माण होता रहेगा। तीसरा है वरदान। बाबा रोज मुरली में वरदान देता है। बाबा ने कहा बाप के वरदान को प्रैक्टिकल में ले आओ तो आप वरदानी मूरत बन जाएंगे। जब बाबा वरदान देता है तो वरदान के लिए गायन है कि जब वरदान मिल जाता है तो जिसको मिला उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदान अपना काम करता है। वरदान लेने की मेहनत है, लेकिन वरदान मिल गया तो वरदान काम करता है। तो बाबा रोज हमें मुरली में वरदान देता है। अगर आपको वो करने में मेहनत लग रही है तो माना आपको वरदान मिला नहीं है। बाप दिया लेकिन मिला नहीं। सिर्फ बाबा कहने से शिव बाबा हमारा सतगुरु है, सतगुरु बाबा है, सिर्फ सतगुरु बाबा कहने से वरदान नहीं मिल जाएगा। जैसे लौकिक में आप जा रहे हैं, कोई बुढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, आपको कुछ काम था, उसे पिताजी 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 कहकर बुलाओ, क्योंकि आपके पिताजी की उम्र के बराबर है। तो क्या पिताजी कहने से वो व्यक्ति आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा क्या? पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी लेने के लिए उसकी जो विधि है अर्थात बच्चा बनना पड़ेगा। ऐसे शिव बाबा जो वरदान देता है सतगुरु के रूप में, तो हमें वरदान लेने के लायक बनना पड़ेगा। जब लायक बनेंगे तब वो वरदान हमें स्वतः मिल जाएगा। लायक अर्थात कैसे लायक बनेंगे? सतगुरु को राजी करना अर्थात लायक बनना। सतगुरु को राजी करने की विधि है कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सतगुरु के पसंद का करो। संकल्प वही करो जो संकल्प सतगुरु बाबा को पसंद है। बोल वही बोलो जो बाबा को पसंद है। कर्म वही करो जो बाबा को पसंद है। तो संकल्प बोल कर्म तीनों जब भगवान के पसंद का करेंगे तब भगवान आपके ऊपर राजी होगा और आपको वरदान देगा। वरदान मिल गया तब वरदान काम करेगा। जैसे अपनी गुलजार दादी है जिनमें बाबा आता है, जब ये हैदराबाद सिंध में थी, शुरू में छोटी थी, तो जैसे बाबा डायरेक्शन देता था उसी प्रमाण गुलजार दादी ने अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया। जैसा बाबा ने डायरेक्शन दिया और इसके एक्यूरेट पुरुषार्थ को देखकर बाबा ने उस समय गुलजार दादी को वरदान दिया था। جب چھوٹی تھی تب کیا بردان دیا تھا کہ اس بچی کے نین بڑے روحانی ہیں، کیونکہ روحانیت کی استھتی میں استھت رہتی تھی، آگے چل کر اس بچی کے نین بہت سیوا کریں گے، اس بچی کے بول بڑے میٹھے ہیں، آگے چل کر اس بچی کے بول بہت سیوا کریں گے۔ بردان تب دیا تھا، وہ بردان اب بھگوان سوئم گلزار دادی کے تن میں پرویش ہو کر بردان کو ساکار کر رہا ہے، آنکھوں سے درشتی دے رہا ہے، مکھ سے مرلی سنا رہا ہے۔ تو بردان لینے کی محنت ہے، بردان مل جاتا تو برداتا اپنا کام کرتا ہے۔ بابا نے کہا بچے، باپ کا بردان ہے جیسے جانکی دادی کو بھی بابا نے بردان دیا، بچی تم سیوا کرتی رہو، باقی تمہاری ساری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ تو ایک ہنسی کی کہانی سناتا ہوں، ہنسی لیکن بردانی آتما کا بردان کتنا کام کرتا ہے۔ تو جانکی دادی شروع شروع میں پونا میں رہتی تھی، تو سیوا جب شروع کی تھی تو سیوا شروع کرنے میں کئی مندروں میں کہیں کہیں جا کر کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے بھاشن کرتی تھی۔ تو دادی تو یوگی تھی، تپسوی تھی، تو بھاشن کا پربھاؤ پڑتا تھا۔ تو ایک بار کوئی اے نوراتریوں کا دن تھا، کسی مندر میں کوئی جھانکی سجائی گئی تھی، اس میں جانکی دادی کو بولا تھا کہ آپ کو آ کر کے بھاشن کرنا ہے۔ جانکی دادی گئی، بھاشن کیا، کافی بھیڑ تھی، بھاشن پورا ہوا، سب لوگ اپنے اپنے استھان پر چلے گئے۔ تو اب دادی کو بھی واپس جانا تھا اپنے استھان پر، کیا ہوا، اس میں سے ایک چپل دادی کی غائب ہو گئی، ایک ہی چپل بچی۔ اب وہاں جو بھائی تھے، دشرتھ بھائی اور دو تین بھائی تھے، تو انہوں نے کہا دادی چپل تو آئی نہیں، ایک ہی چپل ہے، کیا کروں۔ دادی نے کہا اس چپل کو لیتے چلو، تو اس بھائی نے چپل لے لیا اور دادی پیدل ہی جا کر کے تھری ویلر رکشہ پر بیٹھ کر کے اور اپنے جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں آ گئی۔ تو دادی یہی کہتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تم سیوا کرو، باقی کام میرا ہے۔ تو رات کو کیا ہوا، وہ چپل بھیڑ میں کہیں جو مندر کے اس طرف تک چلی گئی تھی۔ تو رات کو جو پجاری تھا اس کو بابا نے سپن میں دکھایا کہ بچی کا چپل وہاں پڑا ہے، وہ چپل لے کر کے دکھایا کہ تھری بلر میں گئی، ننگے پاؤں گئی ہے، یہاں گئی ہے، وہاں اتری ہے، اس کا وہاں کمرہ ہے، لے جاؤ چپل دے کے آؤ۔ یہ سوپن میں بھگوان نے اس پجاری کو دکھایا، اور پجاری صبح چپل لے کر کے اور جیسے جیسے سوپن میں دیکھا تھا، ساکشاتکار کیا تھا، لے کر کے جا کر کے صبح صبح دادی کے پاس پہنچا۔ دادی تو دیکھ کے رانی کہاں سے آ گئے، کیا ہوا، تب اس نے سوپن کی ساری بات بتائی کہ بھگوان نے ایسے کہا ہے۔ उतना स्वपन के आधार से वो पुजारी दादी का भगत बन गया। तो देखो जैसा बाबा कहता है ऐसे चलो, अपने को चलाओ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों, जैसा सतगुरु बाबा कहता है वैसे चलाओ, वो राजी हो जाए तो फिर वरदान दे देता है, फिर वरदान अपना काम करता है, आप निश्चिंत हो जाते हो। तो विधि विधान और वरदान ये तीनों ब्राह्मणों के लिए, अभी जितना अपने को इन पर चलाएंगे उतना इसका लाभ ले सकेंगे। सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा स्वयं इस जन्म में खुशी में नाचती रहेगी और भविष्य में तो विश्व महाराजन के साथ राज घराने में और संगम युग में बाप समान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।